यदि पारण नहीं करते हैं तो एकादश तुरंत हो जाएगी। किसकी हम एकादशी का पहले हम पारण करेंगे, कैसे पारण करेंगे? क्या नाम से जल्द यदि कोई निर्जरा स्वाप रहे एकादशी के दिन बात तो दूसरे दिन ठाकुर जी के चरणाम से उसका पारण हो जाए। और यदि कोई ले गया है फल फूल सब्जे इत्यादि दूध पानी इत्यादि ले गया है तो एकादशी का पारण नहीं होगा। तो ये जो निर्जरा स्वाप थे इसलिए उन्होंने पानी लेकर के पारण किया तुलसी जी का चरणाम। आप तुलसी जी को जरा इधर करके उसका पानी ले करके एक ही कुंज लेकर के अपना पानी आपके में मैं नहीं जानते हो तुम्हें हमारी हमारे आने से पहले तुमने खा लिया हाँ जो करके खड़े उन्होंने जरा खाली कर जाओ उसे बड़ी भारी से आराम से देने लगी और उसको जलाने के लिए दौड़ी। भगवान का चक्र उसी समय में प्रतीक्षा करते भक्तों की सब में रक्षा करता है। आप ही उस कोटि के भक्त हो जाएंगे सप्त में हो रखते बस तुरंत आकर के क्या कर लो एक सेकंड में जला दिया महर्षि के तरफ में बैठा है। जब वो विद्या जलाने के लिए हमें कराई तो हाँ जोड़ के जाते कहते हैं भी को उससे खड़े रहे भगवत जी आप दुर्माता की ऐसे सिद्ध महात्मा और शंकर जी के अवतार जब वो आया सुदर्शन उनको जलाने के लिए तो खड़े तीन जगह तुम मैं उनको कहीं जला के लिए घूमते घूमते पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। अंत में शंकर जी के पास में पहुंचे हमारी रक्षा करो। शंकर जी ने कहा कि मैं नहीं कर सकता विष्णु का क्रोधी भगवत भक्तों का क्रोधी में नहीं रक्षा करता। जब तुझे जाऊंगी तो मैं तुझे भी सब सुदर्शन नष्ट करते हैं। ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मा जी ने नहीं दिया अंत में नारायण के पास में पहुंचे नारायण जी देखो हमने अपना सर्वस्व भक्तों को समर्पण किया है भक्त ही हमारे हृदय हैं और भक्तों का हृदय है मैं उनके अतिरिक्त और दूसरे को नहीं जानता इसे मैं नहीं क्षमा कर सकता। क्षमा करना है तो उसी अमृत महाराज के पास नहीं जाओ वो क्षमा करते हैं हम नहीं क्षमा कर सकते हैं और हमारे सुदर्शन चक्र भी नहीं क्षमा कर सकता। बड़ी देर में पड़े भगवान ने समझाया लेकिन कांटा पैर में गड़ा तो वो सीन से नहीं निकलेगा आया समझ में पैर कांटा गड़ाया पैर में तो कांटा निकलेगा कहां से वो पैर ही से तो कांटा तो गड़ा है वहां और यहां पर आ रहे हो मैं नहीं बस दौड़ करके आए एक बरस का समय लग गया महाराज अपने बिना आए थे एक बरस का फूल को सुनके दिए हाथ जुड़ करके खड़े मुझे बचाओ ये कहकर चंद्री के चरणों में जब गिरे महाराज जी ने पाली कल पास में बद कर दिया महाराज ये मेरे लिए आपको इतना कर दो आप मुझे क्षमा दो कहते मुझे क्षमा दीजिए। उस समय मैंने उदासन के प्रभु हाथ जोड़कर के बतलाया ये प्रभु यदि मैं इसकी काफी सेवा की हो भगवान की सेवा की हो आप उनको प्रसन्न हो तो दुर्गाता ऋषि की क्षमा कीजिए और उनको बचाइए। उसी समय में सुदर्शन चक्र जी अंतरिक्ष एक भक्त विभक्त भक्त राज्यपाल में चंद्रदास का बालभद्रों का भगवत भक्ति इतनी बड़ी है आपको कल्पना नहीं कर सकते। भगवत भक्ति से आप चाहिए तो लाखों करोड़ों रुपये डॉलर पैदा कर सकते हैं पृथ्वी का राज्य पा सकते हैं जो तो पाई किया लाखों लोग इस नाम के बल पर उलझाना जबरदस्त बजाना बाल है ब्रह्म जमाना सुना आप लोगों ने अगर किसी को देखा नाम के बल पर उन्होंने समुद्र को भी पान कर लिया था राम को भी बांधना पड़ा और उनको बस उठाया सूर्य में और उनके पान कर गए। नाम में इतना बल है नाम के द्वारा सृष्टि होती है नाम के द्वारा सब कुछ होता है और महाराज उस नाम को आश्रय करके आपको कुछ नहीं मिलेगा फिर आपको नौकरी करने पड़ेगी। ये आश्रय देखना भगवान का आश्रय दे करके और फिर उसी जगह आत्मे को होने जा रहे हैं ये क्या चीज है। अरे हम नौकरी की आती है तो हम मान ली जाते हैं नाम की नौकरी करो ना कितने की नौकरी करो गोपियों की फ्रेंड में जाकर के नौकरी करो। देखो तुम यदि एक महापुरुष के भक्त थे वो दिन रात बड़े सरकार जैसे हमारे हैं और हरि बोल हरि बोल हरि भोजन के कुछ नहीं मिला, खाने के घर में नहीं है। अरे कुछ खाया पिया? तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तो महाभोजन हमने तो इतना मतलब नहीं समझा। एक्सो की क्या पता है, इसलिए किया आज हमको जब भोजन नहीं मिला आज सारा दिन करेंगे, और फिर जब नहीं मिलेगा तो कल भी करेंगे, हर को हर को, और कभी नहीं तो तीसरे दिन करेंगे, और चौथे दिन जब भोजन नहीं मिला हमारे परिवार को, हमको तो समझा कि नहीं पूछ जाएंगे। महाप्रभु बोले मेरा एकदम यही किस्मत है कि लक्ष्मी जी पात्र लेकर के भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षा करेंगे, किंतु भगवान का नाम करने वाला कभी भी तूफान नहीं जा सकता। किसको याद रखिए, हम लोग प्यारी सन्यासी हैं, पैसा नहीं है पैसा। उन लोगों जैसे परमहंस यहाँ पर देखा आश्रम करोड़पति का फॉर्म बना, हम लोग वैसे नहीं है। हम तो रोज भिक्षा करके जीवन का निर्वाह करते, किंतु हम ये जानते कि हमारे पास में जब एक लाख आदमी अभी आ जाएगा उसकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। हनुमान जी आ जाएंगे, शंकर जी आएंगे, लक्ष्मी जी स्वयं आ जाएगी, राधा की पधार है, हम जानते हैं। इसे इस विश्वास के साथ में नाम करो तो नाम होगा, और जब विश्वासी नहीं है तो उसका नाम क्या होगा। भगवान का नाम का हाथ में लेकर के मित्रों के हाथ में बोल रहे हैं, ये कदम है भगवान का भक्ति जी के पास में। ये सब नहीं क्या, मैं अभी अमेरिका इंग्लैंड हॉलैंड इत्यादि 50 देशों में 10-15 घूम आया, हमको पैसे नहीं चाहिए। हमने कहा पैसे के लिए भारत से दर्शन होकर चले नहीं आए, हमको जब समृद्ध भारत से हम आए हैं तुम लोगों को कुछ देने के लिए, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाए, लाखों लोग तुम्हारे पीछे लग गए, उनको भगवान का नाम दिया और उसमें विश्वास करना सिखाया, हमारी भारतीय संस्कृति के विचारों को समझाया, जैसे हम वरिष्ठ महाराज का बतलाया। बड़ी खुश हो देखिए उसमें से हम समझते कि यहाँ पर भी 25 आए हुए हैं, और मथुरा में लोग हजारों आते हैं, और इस सुंदर को बात की जाए कि हमको छोड़ते नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति के भक्ति के विचारों को जानना चाहते हैं। इसलिए आप लोग हरिणाम देवी का शिक्षा दिया, गोविंद देवी का जब दर्शन कर दिया, और थोड़ा सा कोई दुख आया तो फिर भी लाने लग गए। भगवान का नाम पर विश्वास रखो, यदि विश्व ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले वो है, उनका आदर्श हुआ तो फिर किसी चीज की कमी नहीं होगी। मुझे अनुभव है, मैं जानता हूं जो भगवान का नाम का आश्रय करने वाला भगवत भक्त को कभी भी कोई कष्ट दुख इत्यादि नहीं। हाँ ये बात है, भगवान के भक्त लोग बड़े बैराग्य हैं, लाभ देने पर भी नहीं देते, मालूम होता है कि दरिद्र है। सुखदेव गोस्वामी दरिद्र है कि बैरागी है? दरिद्र है सुखदेव गोस्वामी, कपड़े नहीं बनते, उनको कपड़े पहनने के लिए भी नहीं, ऐसा मत समझो। वो लाखों लोगों को कपड़े दे सकते हैं, सारा विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण कर सकते हैं, इस तरह से समझो। इसे भगवान का भक्त भगवान से भी बड़ा होता है, भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा होता है, इस चीज को समझ करके गोविंद जी और गोविंद के भक्तों में सातम ग्रहण करके चलेंगे। जब गोविंद के भक्तों की सेवा नहीं कोई करेगा तो उनको नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए हम अमृत महाराज जी का आचरण की तरफ प्रतिदिन सवेरे 1 घंटा नहीं हो तो 8 घंटा, मैं तो 15 मिनट जरूर प्रणाम करो, गुरु जी का दिया हुआ शिक्षा मंत्र जपो, सदाचार अवलंबन रखो, गंदी चीजों को मत लो, जूता पहन करके रसोई मत करो, पश्चात देखो दारू का मत करो, हमारी भारतीय संस्कृति पद्धति के विचारों को लेकर के चलो। धोती बांधने में बहुत लाभ है, साड़ी पहनने में बहुत लाभ है। आज पश्चात देखो की सारी लड़कियां अच्छी सी सुंदर ये भारतीय पोशाक पहन रही है, धोती पहन करके साधु जी को पहन शादी प्रणाम कर लेंगे, और कोई पैंट पहन करके करे तो ये तो बैठ नहीं सकता पता नहीं, पैंट पहन कर पैंट जरा हो जाएगा ना, कर बैठ नहीं सकेंगे। इधर दो की बात हो भारतीय संस्कृति में आओ, सौरभ सहज में पैंट पहनने में लगेगा 5,000 रुपया, और धोती में लग जाएगा। आजकल तो बहुत कपड़े महंगे हो गए, तो भी आपको 50-60 रुपये मिल जाएंगे। शादी के लिए ऐसा हमारी भारतीय जैसी पद्धति और पीछे में नहीं नहीं हमें चारों तरफ घूम कर गया है। लोगों को किसी पर विश्वास नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो सुख है उसको बचाने के लिए सुरक्षित मिल जाने वाली है। राजस्थानी ये जो पोशाक है लहंगा और सुटई इसको बजाय रखो। अपने बहनों को भी आप लोग शिक्षा दो जो वैसे ही बने। आप अपने बेटों को भी वैसा ही शिक्षा के गोविंद जी का कर मंदिर में जाते हो जिस प्रकार से होकर के जाओ सदाचार अवलंबन पूर्वक तो भजन में रुचि होगी सात्विक वृत्ति होगी पैन इत्यादि बनने से काम की वृत्ति होगी। इसलिए ये भारतीय पद्धति बहुत सुंदर है। हमारे भारत इत्यादि ने सब चीज का ये व्यवस्था की गई है जिसको अभी आप दर्शन सुनने जा रहा है। अब इसके बाद हम दूसरा प्रसंग बदलाएंगे। यही चल रहे गौरव हमने अम्बरीश महाराज की बात बतलाई। भाई साधन भजन करना है तो ठाकुर जी को धोखा देने से नहीं चलेगा। हरिदास ठाकुर जी भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 लाख परिणाम करते थे 64 का कितना हो गया 192 राउंड करते थे संख्या में नहीं इतना नाम करते थे माला में थे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे ऐसे एक एक कर करके 100 बार हो जाने के बाद में एक ऐसे 192 बार करते थे। कभी सोते कभी वो भी नहीं और कुछ खाते कभी वो भी नहीं। इस बात से इस सरकार से नाम करते कभी कुछ करते करते कभी धीरे धीरे कभी मंडी मन में करते। इनके संग से नजने कितने लोग सुधर गए भाव से लाखों लोग। वाल्मीकि जी एक दो दिन नहीं 60,000 वर्ष तक निरंतर नाम करते रहे तब तो इनका पद हुआ। अंततः इतना ना करो ध्रुव जैसा तो करो और हरे नाम की माला नहीं छुएंगे और छुएंगे तो मन रहेगा इधर भगवान का भजन कैसे लीलाओं का चिंतन करते हुए और भगवान का नाम निरंतर करें सारी आकांक्षाएं उससे मिल जाएगी और भगवान के चरणों की दिशा। इन अम्बरीश महाराज से हनुमान जी सिद्ध हैं। ये अभी साधक थे अम्बरीश महाराज। हम लोगों को दिखलाया कि कैसे शासन करना चाहिए सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना चाहिए कैसे बनना है। अब चलिए हनुमान जी के तरफ में हमने बतलाया कैसे भक्त हैं। एक समय रामचंद्र जी राज्याभिषेक के बाद में सबको पुरस्कार देकर के उनको विदा कर रहे हैं। अंगद इत्यादि को विदा किया सुप्रीम को और दूसरों को जान मान को सबको विदा जब कर रहे थे उस समय में हनुमान जी को उन्होंने बुलाया। हमारे पास तो कुछ देने के लिए सीता जी के तरफ में देखा सीता जी ने एक नौलखा हार दे दिया उनके गले में जो विवाह का समय का था। हनुमान जी ने उसे देखा गले से निकाल करके एक मनिया को छोड़ दिया सांप देखा फेंक दिया। इस तरह से सारे मनियाओं को तोड़ करके फेंक दिया। राम जी हंसे विजय आपकी तो बंदर क्या जाने आधा का सवा अदरक वही आदर क्या सवा क्या जाने आपने सब तोड़ दिया क्यों तोड़ दिया क्यों थोड़ा बतलाइए। ये सीताजी ने दिया उन्होंने कहा मैं देख रहा था इसमें तोड़कर के इसमें राम है कि नहीं राम ना तो तेरे हाथ तेरे हृदय में है तो देख लीजिए। बस ऐसा फड़ा उस पर से नहीं कहता राम राम रोम रोम में बिना वो नाम से रहते नहीं। ये हरिदास जी को बतलाया इनसे भी अभी वो तो 24 घंटे में
हो सकता है कि 5 मिनट 10 मिनट सो जाए, इनको सोने से कोई संबंध नहीं। तब भगवान के ऐसे भक्त हैं और हम लोग क्या हैं, सेंट मित में गुरु जी ने माला दे दिया, बस रंग घर में रख दिए, गीता की गुरु जी ने पढ़ने के लिए और गीता को बांध करके रख दिया ऊपर, और वो देखा नहीं, ऐसे ही भक्ति हो जाएगी। यदि भजन करना है तो इन लोगों को हनुमान जी में इतनी है, सब सेवा करते हैं, किंतु बहुत सी सेवाएं हैं उसमें नहीं जाते। यदि रविवार के अंदर में गीता जी के साथ में किसी कारण से हैं, हनुमान जी नहीं जा सकते। कोई मीठी चीज खा रहे हैं हनुमान जी और उनकी इच्छा में एक बहुत मीठा फल है, अपना जूठा नहीं दे सकते। राम को आलिंगन करके हृदय पास में पत्थर नहीं कर सकते। बहुत सी उनकी प्रेम में कमियां दिखती है नहीं, किंतु प्रेमी भक्त के साथ में सात्सम्य में जब प्यार कर रहे हैं तब देखते हैं। देखो पांडव लोग हैं, द्रौपदी जी हैं, भगवान की कितनी प्यारी, किस प्रकार से पांचों पांडव लोग विशेष करके अर्जुन द्रौपदी की प्यारी राम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। यहां तक कि एक बार शिवाजी नारद किसी भक्त को देखने की इच्छा थी, जब मैं देखती किसी भक्त को जो इस समय वर्तमान काल में सबसे भक्त हो, शंकर जी ने उनको भेज दिया नारद जी को हस्तिनापुर या इंद्र पर, अर्जुन के भवन में जाकर के देखना। अर्जुन के भवन में गया, देखा उन्होंने बिना लिए वे जा रहे थे, देखा गया अर्जुन के भवन में पलंग बिछा, उस पलंग पर कृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ में सोए हैं, एक तरफ सिर करके नहीं, जिधर अर्जुन का सिर है उधर में कृष्ण का पैर है, और जिधर कृष्ण का पैर है उधर अर्जुन का सिर है, जिधर कृष्ण का पैर है उधर में द्रौपदी और सुभद्रा जी की चमक जला रही है, और जिधर कृष्ण का सिर है उधर में सत्यनारायण रुक्मण इत्यादि चमक जुड़ा है। अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है, अर्जुन के पैर को कृष्ण ने अपने वस्त्रस्थल पर रखा है, और अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण के चरण कमलों को अपने वस्त्रस्थल लेकर के इधर ले लिया। कहता प्रेम हनुमान जी ऐसा सो सकते हैं राम के साथ में, कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब तो वो अर्जुन और द्रौपदी और कृष्ण का नाम लेने लगे और नाचने लगे आनंद। यही नहीं, अर्जुन के घोड़े छोटे रथ चलाते हैं, सेवक का काम करते हैं, हनुमान जी का सेवा का काम राम करेंगे, किंतु अर्जुन क्या करते हैं, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गए, बोले कि मैं लड़ूंगा नहीं, तुम हमको ले लो, और दुर्योधन से बोले हम लड़ेंगे नहीं, हमारी सेना एक तरफ है, सब सेनापतियों के साथ में मैं अकेला में लड़ूंगा नहीं, तुम किसको लेना चाहते हो, तुम पहले आ जाओ। ये जहां सोए हुए थे कृष्ण भोर में, उसी समय में दुर्योधन पहले आया, वो देखा कि पैर की तरफ में बैठे थे तो हमारा सम्मान होगा, वो सिर की तरफ में बैठ गया, और पीछे में अर्जुन आए तो वो पैर की तरफ में बैठ गए, तो कृष्ण झट उठे, अरे अर्जुन तुम कब आए, तो दुर्योधन पीछे से कहता है कि प्रभु मैं पहले आया था, अर्जुन भी पहले ही नहीं आए, ओ आप आए हैं पहले, अच्छा तो आप बताइए किस लिए आए, मैं आपको लेने के लिए निमंत्रण देने के लिए आप हमारे तरफ से महाभारत युद्ध में युद्ध कीजिए। कृष्ण ने कहा कि देखो मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, आप अस्त्र शस्त्र अपने हाथों से नहीं उठाऊंगा कभी, तो एक तरफ में मैं हूं और एक तरफ में हमारी सारी चतुरंगनी सेना है, दोनों में से कोई आप ले लीजिए आ गया है, तो जो आप लड़ेंगे नहीं तो आपकी जरूरत क्या है, तो आपने चतुरंगनी सेना सेनापतियों के साथ में दे दी, उनको देकर के विदा किया। अर्जुन ने कहा कि मैं तो मरने वाला था, आपने बचा दिया, हमको चतुरंगनी सेना की जरूरत नहीं, हमारे अपने मन की शांति की जरूरत है, बस हमारे मन के ऊपर में बैठ करके हमारा संचालन करें, हमको शुद्ध शुद्ध आप इच्छा मात्र से करोड़ों करोड़ों जगतों का भी संहार और प्रलय कर सकें। इसलिए हमको आपकी चीज आप नहीं मिलते, मैं प्राण छोड़ देता हूं। देखो कैसी इनकी निष्ठा है और कैसी निष्ठा। एक समय की बात है, महाभारत युद्ध आरंभ हो गया, भीष्म पितामह 10,000 भक्तियों को रोज मार रहे हैं। ऐसा करने से 10 दिन के अंदर में तो सारी सेनाओं को हम चौपट कर देंगे, कोई बचेगा ही नहीं। उसी समय में दुर्योधन भीष्म पितामह के पास में गया, पितामह जी आप लड़ तो रहे हैं हमारी तरफ से, यह बात ठीक है, किंतु विजय चाहते हैं पांडवों, आपके लिए देखने सुनने से मालूम होता है पांचों पांडवों में से कोई आपके सामने जाता है आप उसको नहीं मारते, क्यों? इसका मतलब है आप पांडवों का विजय है। ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे तुम्हारे तरफ से लड़ रहा हूं, मैं तनिक भी कुछ कमी नहीं दिख रहा है। यदि ऐसी बात है तो आप हमारी पत्नी जी को बरदान दीजिए, क्योंकि आप जो कुछ कहें वो सत्य होगा, ये इसमें युद्ध में तुम्हारी जय होगी। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, अभी नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी तो मैं लड़ने आया हूं, रात के समय में आधी रात के समय में मैं समाधि में मग्न रहूंगा, तुम अपनी पत्नी को लेकर के आना और उस समय में मैं उसको ये बता दूंगा। ठीक है, बात ठीक हो गई। युद्ध बंद हो जाने के बाद में शाम को रात में ठीक 12 बजे मूसलाधार वर्षा होने लगी, आंधी तूफान चलने लगे, पेड़ पर्वत तक गिरने लगे। दुर्योधन ने अपनी पत्नी को कहा जाए जाने की बात की भीष्म पितामह, किंतु इसमें अंधड़ में हम जाएंगे, अभी कभी बजेंगे प्यार, कभी कुछ हो गया हम ही मरेंगे, आज नहीं तो कल चलेंगे। और कृष्ण ने उसी समय में द्रौपदी को बुलाया, सखी अभी तू हमारे साथ में चल, एक जगह चल रहा है, कहां चल रहा है? भीष्म पितामह। इसलिए ऐसी बात है समझा दिया, उसे जाकर के उनके सामने मुखट निकाल करके जाएंगे, तुमको देख न सके। आज दुर्योधन की पत्नी भानुमती को जाने की बात थी, किंतु आज जाग नहीं सके, मैं जानता हूं इसे तुम जाकर तो वहीं पर खड़ी हो जाना और तुमको वो बात कर देंगे, ये तुम लोग युद्ध में विजयी होगी और तुम्हारा स्वभाव नित्य ठीक रहेगा। बात ऐसे भी कृष्ण अपने रथ पर चढ़ा दिए, अर्जुन के रथ पर, और चढ़ा करके ले करके गए उनके शिविर में, जहां पर जो राजनीति काम कर रहे थे उसमें समाधि मग्न थे। द्रौपदी जी को रथ उतारा, तुम जाओ घुघट निकाल लो, वो घुघट निकाल करके उनके पास में गई सामने जाने के बाद में कुछ देर के बाद में उनकी समाधि टूटी। देखा जैसे वो हनुमति जी आ गई है, बस उसको आप तुम सौभाग्यवती हो, तुम्हारा भाव अखंड सौभाग्य हो, मतलब क्या युद्ध में से विजय, नहीं तो सब तुम मारा जाता तो वो लोग मारे जाएंगे, तुम नहीं मारी जाएगी। उन्होंने हनुमति समझ करके अब ये बर दे दी, तब वो मुस्कुराते हुए घूंघट उठा करके उनके चरणों में गिर गई। अरे बेटी तू कैसे यहाँ रात में आ गई, तेरी आने की तो बात नहीं थी, ओ तुम्हारे साथ कोई आया है, कौन आया है बताओ? तो वही आया है जिसको आप समझ रहे हैं, भाई भगवान शरणागतों की रक्षा करते हैं, हनुमान के लिए ऐसा कृष्ण या आराम नहीं कर सकते, क्योंकि क्या शक्ति है? गोपियों को जैसे सखी कहते थे, अपनी बहन सुभद्रा से अपनी बहन का उनका सुभद्रा जी का बहुत आदर करते, जहां बुलाया किसी से आ जाते, किसी के लिए आशा नहीं करते। इसलिए पांडव लोग थे, केवल यही नहीं, ये तो बदलाए कि कृष्ण उनकी सेवा करके अपने को शासक कर रहे हैं। कुछ और सुनिए, एक समय की बात है, सुभद्रा जी की बड़ी हो गई, बहुत पहले की बात, बड़ी हो गई, अभी शादी नहीं हुई है और शादी के जो भी अब 24 वर्ष की हो गई है, उस समय में घर वालों को चिंता भी बढ़ते देवकी की, कृष्ण की बलदेव की जिसकी शादी हो जानी चाहिए, जो ये बच्चे हुई हैं। बलदेव जी की बात चलती थी घर में, उनके सामने किसी की नहीं चलती थी, कृष्ण की भी नहीं, बलदेव देव की किसी नहीं। उन्होंने स्थित किया बलदेव जी ने, इसकी शादी हम सब प्रकार से जोधन है इससे दे। और घर के बाकी सब लोगों की, बलदेव देव की, कृष्णा और घर के सभी लोगों की, सारी महिलाओं की, सप्तभामा रुक्मिणी की भी शादी की, हमारी भरत की शादी किससे हो, और भी रुके सब प्रकार से वीर हैं, बहुत चरित्रवान हैं, गुणी हैं, जिसे इनके साथ, किंतु बलदेव जी की इच्छा नहीं थी। इसलिए बलदेव जी ने समझ रखा था कि जब शादी उसी से हम कराएंगे समय पर, और सबसे वो कह भी दिया, किंतु इन लोगों ने कुछ बताया नहीं। कृष्ण से और अर्जुन से कुछ गुप्त बातें हैं, और इसके बाद में अर्जुन हम लोगों का ये त्रिदंड है, त्रिदंड भेद लेकर के गिरवे कपड़े पहनकर, चोटी रखकर, गले में तुलसी की माला, खड़ाऊ पहनकर और द्वारका में पहुंच गए, और समुद्र के किनारे में वृक्ष के नीचे अपनी छोटी छोटी सी झोपड़ी बना करके और वहीं पर भगवान का ध्यान और जप और चिंतन कर, उनका यह रूप देख करके, रूपांत तो थे ही, रूप देख करके और गुण देख करके सारे द्वारका के सब लोग आने लगे। और विशेष करके कृष्ण ने प्रचार किया है समुद्र के किनारे एक सिद्ध महात्मा आया है, उसको जब द्वारकापुर में किसी ने देखा तो इसे सारे मनोसूर हो जाएंगे। इसलिए सभी जितने थे द्वारकापुर वाले महिला पुरुष सब लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। उनकी बहुओं ने बताया कि देखो सुभद्रा, चलो हम लोग चले उनका प्रसन्न महात्मा जी, जो कभी आकांक्षा उनमें पूरी हो जाएगी। सुभद्रा जी को नक्शार किया, तरह तरह के आभरण आभूषण उनको बनाया और एकदम नवेली भी बनाया, और बनाने के बाद में महात्मा जी का दर्शन, श्रीदर्शी महात्मा जी का दर्शन करने के लिए भी जब दर्शन करने के लिए गई तो पहले से अर्जुन को वो जानते थे और अर्जुन भी उसको जानते थे, किंतु हम लोगों के युगों में ऐसी बात की वैदिक संस्कृति में, जब तक कि चखा प्रसादी न हो जाए, आंख उठाकर से न देखे, किंतु बात तो चली पड़ी थी। अर्जुन ने देखा कि सुभद्रा जी आ गई है, और इनकी कौन और रुक्मिणी सप्तभामा इत्यादि सजा करके ले आई है। जब उसको प्रणाम करने बैठी और अर्जुन को पहचाना तो अर्जुन ने मुस्कुरा दिए, उसने भी मुस्कुरा दिए, और अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और जिस तरफ पर सुभद्रा जी आई थी उसी के ऊपर में चढ़ा दिए और अपने भी चढ़ गए। सुभद्रा के हाथों में थोड़े की रास दे दी और अपने अर्जुन शस्त्र लेकर के खड़े हो गए। जो रक्षक थे जब उन्होंने मना किया तो अर्जुन ने उनको मार कर भगा दिए और द्रौपदी जी रथ चढ़ा करके भगा रहे। सुभद्रा जी चला रही है रथ, अर्जुन उसमें बैठे हैं, और इतने बलदेव जी हल और मुझको लेकर के दौड़े क्रोध के मारे। अर्जुन हमारे घर में आकर के इतना सम्मान किया, इतने लाखों जगमन की भीड़ है, ज्यादा लोग हैं, और हमारे घर से हमारी बहन को ले गया, आज उसको बिना मारे हुए छोड़े नहीं, क्रोध से उसके तरफ में दौड़े। कृष्ण बीच में मिल गए, कहे भैया कहाँ जा रहे हैं? तो जा रहा हूँ, देखता नहीं हमारे आज पंच का किसी प्रतिष्ठा के स्कूल में मिला दिया, हमारे बहन को यहाँ पर रथ में लेकर के और चला जा रहा है हम लोगों के सामने, और भी उसको मार। कृष्ण ने कहा कि देखो तो जिससे जो अर्जुन रथ चला रहा है तो सुभद्रा चला रही है, कौन चला रहा है? तो देखा कि सुभद्रा तो सुभद्रा भाग रही है लेकर के अर्जुन को, ना अर्जुन भाग रहा है, हम तो कहते हैं सुभद्रा ही भाग रही है, और आप उनको मारने के लिए जा रहे हैं, सुभद्रा को मारेंगे ना उसको मारेंगे? तुम्हारी भी गई खुशी है तो पहले क्यों नहीं बनना है उनको? और अर्जुन को मारेंगे और सब लोग तो शादी हो ही गई, जिसी तरह से हो दास तरह से विवाह, इसे तो तुम्हारी बहन भी सभा होगी, अब क्या करेगा? कहे पहले क्यों नहीं हमको बदला है? इतनी साजिश भीतर से चल रही थी परिवार घर की, अब हमको बदला है नहीं। तो अर्जुन कृष्ण तुमने ये ऐसे प्यार है कि अपनी बहन को भी देकर के अपना बंधु बनाया
है।
और हनुमान जैसे वीर को राम भक्तों को क्या दिया? ओ हमारे भक्त की रक्षा करने के लिए प्रजा पर सब समय 2400 घंटा विराजमान रहे, कोई भी गड़बड़ी हुई तो हम इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल समझेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ के ऊपर न रख करके सब समय उनकी रक्षा करते हैं। कोई कुछ होता है बस ऐसा अहंकार करते हैं कि उनका बांध चुक जाता है। इस प्रकार से हनुमान जी को जिनकी सेवा में लगा ली तो वो कहते हैं ये हमारे पांडव लोग, और द्रौपदी को तो जानते, द्रौपदी को पांडव में सबसे अधिक प्रीति करते। क्यों प्रीति करते? द्रौपदी के कृष्ण भी सर्वस्व थे और इसीलिए वो अपनी सुभद्रा से भी अधिक द्रौपदी का सम्मान करते थे। बड़ी गुणी थी। अब इनसे भी इनमें भी कुछ कमी है। जहां अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में जब कृष्ण का विराट रूप देखा, असंग खड़गों के मुख में जा रहे हैं और सभी मृत्यु मुख में पतित हैं, सभी उनके दांतों तले में मरे हुए पड़े हुए हैं, ये कृष्ण ने दिखलाया तो अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़े हुए, प्रभो हे समस्त ईश्वरों के ईश्वर, मैंने आपको भूल बरसत कथा कहा, कभी भी कहा हो मेरा अपराध हुआ। आज से आपको सखा नहीं कहूंगा, आपको मित्र नहीं कहूंगा, आज से आप हमारे साथी नहीं रहेंगे, अब से हमारे आप प्रभु हैं, ईश्वर हैं, हमारे ऊपर से कृपा कीजिए। इस प्रकार से ये क्या चीज है? देखो भगवान की भक्ति दो प्रकार से, भगवान की लीलाएं भी दो प्रकार की होती है, एक ऐश्वर्य लीला एक माधुर्य। ऐश्वर्य लीला किसको कहते हैं? जहां पर भगवान की भगवत्ता प्रकाशित हो उसको ऐश्वर्य लीला कहते हैं। कैसे ऐश्वर्य लीला? जैसे शंख चक्र गदा पद्म धारण किया गया ऐश्वर्य है। द्वारका में कभी कभी शंख चक्र गदा पद्म लेते थे, कितने राक्षसों को उन्होंने विनाश किया जो दूसरों के लिए संभव नहीं। ब्रज में गोवर्धन पर्वत को खा दिया कानी उंगली से, ये क्या है? ऐश्वर्य लीला है, कोई मनुष्य नहीं कर। इसलिए ऐसी लीला जो मनुष्यों के लीला की शक्ति के बाहर है, ऐसी लीलाओं को प्रकाश करते हैं उनको ऐश्वर्य लीला कहते हैं और उस रूप को ऐश्वर्य रूप कहते हैं। तो कृष्ण के बहुत से रूप हैं, ब्रज में एक रूप है, मथुरा में द्वारका में एक रूप है, द्वारका में मथुरा में ऐश्वर्य लीलाएं हैं। कंस को मारना सहज काम नहीं था, उसको मुक्ति दे देना ये सहज मनुष्य नहीं कर सकता। गिरिराज को गोवर्धन को उठाया, उस समय ब्रजवासियों की बड़ी भीड़ लगी, उपानंद इत्यादि आए, शांति ऋषि इत्यादि आए, गंगाचार्य आए, नंद जी को बुलाया, बैठक हुई। देखो ये कृष्ण को साधारण बालक मत समझो, बालक अवस्था में 3 दिन 4 दिन का रहने पर इसने पुतना को मार डाला, अघासुर बकासुर इत्यादि सबको मारा, अभी गोवर्धन को धारण कर दिया, ये साधारण मनुष्य का काम है? ये कोई भगवान का अवतार है या कोई बहुत बड़े ऋषि महर्षि हैं या कोई है? इनको कभी कान मत उठना, यशोदा जी को कह देना उनको गाली गलौज न करे, आप भी उसको अपना जूता लेकर के उसके सिर पर मत दीजिए। कभी कभी नंद बाबा कहते हैं हमारी जूती लगी हो तो यहां पर रख करके ठीक ही नाचते भी जा रहे, इसको जूता मत खिलाना, सावधान रहना। इसलिए सब तो मना कर, क्यों? अरे ये भगवान होगा, भगवान का अवतार है, गंगाचार्य भी ऐसा करता है। तो नंद बाबा जी हंसने लगे, हंस करके कहने लगे, देखो वो लोग 80 वर्ष के बाद में नाबालिग वोट देने के अधिकारी होते हैं। समझा क्या कहा? 80 वर्ष के बाद में उनको वोट देने का अधिकार होता है, तो ये जितने हैं ऐसे ही हैं। अरे बतलाओ बुद्धि के पहाड़ों, जिनको 10 बार दिन में भूख लगती है, जो कि मक्खन और मिट्टी की चोरी करता है घरों घरों में, एक दो घरों में नहीं, वो भगवान हो गया? जिसको भूख लगती भगवान को कभी भूख लगती है? उसको तो लगती नहीं। यशोदा मैया से बार बार हट करता है और झूठ होता है भगवान, कभी झूठ होता है? मैया जी मैं नहीं मक्खन खाया, मैंने मक्खन नहीं खाया, इस तरह से झूठ बोलता है। और क्या करता है? लड़कों से लड़ाई झगड़ा करता है। तो ये ब्रह्म कैसे बन गया? ये ब्रह्म कभी नहीं बन सकता है। और ब्रह्म ही है तो हमारा लड़का है, हम इसका शासन करेंगे, इसके हम मंगल के लिए हम कार्य करेंगे। नंद बाबा नहीं मानते, ब्रज का कोई भी नहीं मानता है, इसलिए ब्रज के वो भगवान नहीं है। हो सकता है कि हम लोगों के लिए भगवान गोविंद जी हो सकता है द्वारका वालों के लिए भगवान हो, मथुरा वालों के लिए विशेष करके भगवान हो, किंतु ब्रजवासियों के लिए ये गोविंद कौन है? जो यशोदा जी के लाला हैं, मक्खन मिट्टी चुराने वाले हैं, भूत हैं, झूठ बोलने वाले हैं, एक साधारण लड़के से गौ को पीछे पीछे ढूंढने वाले हैं, इसको कहते हैं महापुरुष के लीला। और भगवान वाले को ऐसे भक्त जो है ब्रज के लिए महापुरुष के लीला ही जाते हैं। कभी भी कृष्ण को भगवान कोई भी परिचार कथा से लेकर यहाँ तक कि गौ बछड़े तक भी नहीं मानते उनको भगवान। ये उपासना सबसे है, यही उपासना दिल्ली में। उनको जहां भगवान माना सब गड़बड़ हो जाए, सब तो भगवान हो जाएंगे द्वारका देव के, फिर ये गोविंद जी नहीं रहेंगे। जहां गोविंद जी है वहां पर गाय रहेगी, उनकी बंसी रहेगी, मोर मुकुट रहेगा, उनका परिचय होगा कि नंदन नंदन या यशोदा नंदन है। द्वारका में जाएंगे तो बंसी रहेगी नहीं रहेगी? वहां पर मोर मुकुट रहेगा नहीं? वहां पर ग्वाले नहीं रह सकेंगे? वहां पर परिचय नहीं देंगे मैं नंद बाबा का बेटा हूं या यशोदा का बेटा हूं, मैं राधा का हूं, तो ये नहीं कर सकते, उनका परिचय ही बदल जाता है। इसलिए महापुरुष के लीला के बहुत बहुत ये ऊंचा है महापुरुष के लीला। ये ब्रज के अतिरिक्त वृंदावन के अतिरिक्त में और कहीं भी ये संभव नहीं हो सकता है। अब हम चलते हैं जो भी प्रेमान, अभी तो प्रेम पर कहा पांडवों का, अब प्रेमासुर कौन से भक्त लोग हैं? ये है उद्धव और कृष्ण। यहां के क्या करते हैं वो लोग? तो कभी कभी साथ रहते हैं पांडव लोग और बहाना बनाकर के कृष्ण लड़ते हैं कि कृष्ण को बुला लाए, ऐसे नहीं कृष्ण आते, जुआ खेला है उसमें सब कुछ हार गए, इसलिए जो दूसरे के हारने वाले नहीं थे इस हारे क्यों, हारने से कृष्ण आएंगे, कोई गड़बड़ी होगी, ऐसे तो आएंगे नहीं। इसलिए जब जब जरूरत पड़ती कृष्ण को बुलाने के लिए युद्ध में कहीं हार जाते हैं, कभी जुआ में हार जाते हैं, कभी कुछ हो जाता, जान बूझ करके उनका षड्यंत्र था, कृष्ण भी उनके षड्यंत्र को नहीं समझ पाते, वो ऐसे भक्त लोग हैं, किंतु रहते हैं यहाँ द्वारकापुरी में। और वहां पर उद्धव जी उनके सबसे प्यारे हैं, उनसे बढ़कर के कोई कोई प्यारा कैसे भक्त, उनके मंत्री हैं, उनके सभाकार हैं, सेनापति हैं, सखा हैं, बंधु हैं, दास हैं और विद्या हैं, बृहस्पति हैं, ये साधारण नहीं। ऐसे जो ये कृष्ण हैं, कृष्ण के सेवक हैं, उद्धव के बिना नहीं रहते। यदि कुबल्या ने कावन किया, चारू मुक्ति को मारा, कंस को मारा और मारने के बाद में उन्होंने एक प्रतिज्ञा की है एक शक्ति से, किससे? कुबल्या से, क्या जब मैं पीछे आऊंगा तुम्हारे, तब जब गए तो किसको साथ दिया? उद्धव जी को साथ, उद्धव जी को साथ लेकर के उसके घर पर गए मिलने के लिए। और उसने अपने घर को देखा बड़ी सब विचार करके और कृष्ण सेवा के लिए उपस्थित, सारे द्रव्य उसके घर में पड़े थे, साधारण नहीं थी, कुबिया थी, किंतु कंस की दासी थी, उसके लिए राजभवन उसने बना दिए थे। वो मुख से बड़ी सुंदरी थी किंतु अंग उसके आसंगों से चढ़े थे, तो कृष्ण ने बड़ा सुंदर बना दिया। जब बना दिया तो ऐसे हो गई कि मथुरा कोई में उसके समान कोई सुंदरी नहीं, बड़ी लजाती हुई और कृष्ण को हाथ पकड़ करके अपने घर में ले गई और उद्धव जी को बैठने के लिए आसन दिया। तो उसने क्या किया, आसन तो लिया उद्धव जी और उसको चारों तरफ से प्रदक्षिण किया और प्रदक्षिण करके उसको करके रख करके वहां पर नीचे बैठे। क्यों, कृष्ण के बराबरी वहां पर गई। पूजा कैसी थी, भाव हमारे कृष्ण की, गोविंद जी की, तीन प्रकार की प्रियाएं, नायिकाएं, साधारणी, सम्मज्जा और सभक्त। कृष्ण को बची भूत करते गोपियों के अतिरिक्त और गोपियों में भी राधा का अतिरिक्त कोई भी समर्थ नहीं है, जो अपनी प्रेममयी सेवा से किसी को बची भूत करते कृष्ण को, बस गोपियां ही समर्थ है, इसलिए इनके प्रेम को समर्था रति कहा जाता है। कृष्ण को बची भूत करने में समर्थ जिसकी भक्ति प्रेम है, इसे गोपियों की रति को समर्था एक सम्मजता समंजस असमंजस। इनके अंदर में कुछ काम की निकृति होती है, गोपियों में काम एकदम नहीं, उनका निर्मल प्रेम। इनमें कुछ संतति की भी कभी कभी इच्छा होती है, कुछ इत्यादि गोपियों में एकदम नहीं, निश्चल प्रेम। और लोगों में उपाधि प्रेम है, उनमें सुपाधिक और इसमें निरुपाधिक गोपियों में, और इनमें पुत्र भी कन्या भी सब कुछ है, राज्य भी है, इसलिए इनकी रति जो है समाता कृष्ण को वशीभूत नहीं कर सकती। एक बार यदि शासन कर दिया तो रुक्मिणी जी गिर पड़ी। एक समय कभी द्वारका में, द्वारका की बात है, किस बात को बतला रहे, रुक्मिणी विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में भी अभी संतति नहीं हुई, बड़ी सुंदरी थी उस समय विश्वभर में, वो मिस वर्ल्ड की मिस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स थी। यदि इस समय की मिस यूनिवर्स भी उनके सामने खड़ी हो जाए, उनके चरण की नख की चंद्रिका के बराबर भी ये मिस यूज नहीं होगी। ऐसी रुक्मिणी की थी, उनको देख करके, इन लोगों को देख करके बस सिनेमा वाले आकर्षित होते हैं, धनी धनी लोग सिनेमा में मॉडल बनाने के, और उनको कृष्ण भगवान स्वयं पटरानी बनाने के लिए उनको मोहित, उनको मोहित कर दिया। रुक्मिणी की एक दिन राजभवन में बैठी थी और उसने और भी रानियां पटरानियां सब वहां पर निमंत्रण किया और रुक्मिणी जी कृष्ण श्याम सुंदर जी बैठे हैं पलंग के ऊपर में और रुक्मिणी जी अपने हाथों से चमक रही, दासी के हाथ से चमक ले दी, पान की बेड़ी उनके मुखार बंद ले दी और झल ले दी। कृष्ण आज कुछ गंभीर लगे। थोड़ी देर के बाद में कृष्ण बोले, रुक्मिणी तुम्हारे साथ मैंने अन्याय किया, बहुत अन्याय, तुम विश्व ब्रह्मांड में सबसे सुंदरी हो और मैं सबसे कैसा हूं, काला, तुम सब गुणों की आदर हो, ऐसा गुण नहीं जो तुम में नहीं, और मैं निर्गुण हूं, तुम्हारी सेवा तुमको पाना चाहते हैं जगत के पिछले बड़ी धनी धनी बड़े सुंदर राजकुमार और हमको जगत के उपेक्षित दरिद्र ऐसे जो लोग हैं वही लोग हमको याद करते हैं, दूसरे नहीं याद करते। तुम राजा की राजकुमारी हो और मैं साधारण व्यक्ति का बेटा, साधारण बेटा, इसलिए तुम हमारी युग में, मैं जानती हूँ, जानता हूँ, इसलिए आज तुम कहो मैं किसी के पास में ले चलूँ, जिसको तुम चाहती हो उसी के पास में तुमको दे आऊँ। यदि कहो जो वो तो विवाह नहीं करेंगे, नहीं नहीं हमको नीचा दिखलाने के लिए सिर्फ बाल अभी तुम्हारे पलक पावड़े दिखाए हुए तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। जरासंध और जितने भी हैं राजा लोग सब तुम्हारे लिए अभी अपने हृदय में आसन बिछाए हुए तुम्हारे लिए चाहते हैं कि इसे कृष्ण का अपमान होगा इसलिए ले गया और तुम वास्तव में सुंदरी हो तुमको सभी लोग ले लें। ऐसे सुनते ही हाथ से चमक गिर पड़ा और मुश्चित होकर के जमीन पर गिर गई, आंखों में आंसू में गए सुख गए। कृष्ण ने देखा तो अजब तमाशा हुआ, उन्होंने देखा रुई का सहा लेकर के देखा ये सब श्वास प्रश्वास भी चलने अब बंद हो गए हैं, अब क्या करें। कृष्ण बड़े चिंता में पड़े और वो पलंग शनि के उतर के उतर करके जहाँ पर गिरी हुई बैठी थी उनके कान में कहने लगे मेरी प्रिय समाज हुई, मैं तुम्हें छोड़कर के संसार में किसी को नहीं जानता, मेरा अभ्यास प्रति का बड़ा खराब पड़ा है, मैं गोपियों से ऐसे ही कुछ करता था नखरे करता था और उन्हीं बिगड़ करके क्रोधित होकर के हमको कुंज से निकाल देगी और उसके बदले की कार्रवाई कर दी। मैंने सोचा कि घर में एक जगह रहते हैं दिन भर एक रस से रहना ठीक नहीं लगता, जहाँ बर्तन रहते हैं तो खटखट खटखट करते हैं, कभी मैं देखना चाहता था कि तुम कभी हमारे ऊपर में बिगड़ करके मुख टेढ़ा करके हमारे ऊपर में ऐसी बातें करो क्रोध से बातें करो, मैंने कभी देखा नहीं। इसलिए प्रेरित याद आ गई, इसलिए मैंने ऐसा सोचने का स्थिति लगी थी, मैं क्या चाहता था ये तुम ऐसे ही मर जाएगी सुनते ही, इसलिए भी शाम नहीं सकती, मुझे तो भाई प्रेरित की याद थी, इसलिए तुम उठो उठो मर जाएगी तो हम भी मर जाएंगे तुम्हारे, मैं सत्य प्रतिज्ञा कह सकता हूँ कि तुम हमारी सबसे बड़ी प्रिय सुना है। धीरे धीरे काम में कहने लगे तो धीरे धीरे होश आया, किसी प्रकार से उठी हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगी कि प्रभु आप ठीक कहते हैं, हमको जगत के राजकुमार लोग चाहते हैं और आप लोग ईश्वरों के ईश्वर कितने हैं वो सब आपको चाहते हैं, आपको सारे भक्त चाहते हैं, हमको ऐसे जितने भक्त नहीं है ऐसे दुर्जन लोग हमको चाहते हैं, आप निर्गुण हैं, संसार के जितने भी गुण हैं उन गुणों से भी अतिक्त आप हैं, अपराध गुणों के भंडार हैं और मैं इस जगत की एक राजा की लड़की और आप स्वयं भगवान हैं, और ये जाकर के रोने लग गई।